ఓం శాంతి. మురళీధర్కి మురళీ తో అభి సునా హీ హై ఆప్ సబ్నే. కేసే లగా మురళీ? అచ్చీ హై నా? తో ఉస్మే క్యా క్యా బాతే ఆప్కో, క్యూంకి దేఖో జైసే భోజన్ హోతా హై, భోజన్ బహుత్ అచ్చా హోతా హై, లేకిన్ ఉస్కే లియే క్యా కర్నా పడతా హై? అచ్చే సే కామ్ నహీ చల్తా హై, ఉస్కో ఖానా భీ పడతా హై, చబానా భీ పడతా హై, తబ్ జాకే వో క్యా హోతా హై, ఉస్కా ఆనంద్ భీ హమ్ లేతే హై ఔర్ అప్నా తాకత్ భీ బన్ జాతా హై, హై నా? వైసే భీ మురళీ సునతే సమయ కన్రస్ తో హోతా హై, బహుత్ అచ్చా లగతా హై మురళీ, క్యూంకి స్వయం మురళీధర్ కా మురళీ హై. లేకిన్ ఉస్ మురళీ కో జబ్ హమ్ చింతన్ కరేంగే, జబ్ హమ్ మనన్ కరేంగే, తో వో క్యా బన్ జాయేగా? అప్నీ ఖుద్ కీ తాకత్ బన్ జాయేగీ. తో అభి ఆజ్ కీ మురళీ కా జో జో బాతే హై, క్యూంకి మురళీ తో బహుత్ బడీ హోతీ హై, తో ఉస్మే ముజే క్యా అచ్చా లగా హై, ముజే క్యా ధారణ కర్నా హై, ఔర్ సారే దిన్ మే ఐసీ క్యా బాతే హై జో యాద్ రఖే. తో కభీ భీ మురళీ సునతే సమయ చార్ ప్రకార్ సే ఉస్కో నోట్ కర్నా హోతా హై. హమారీ సబ్జెక్ట్స్ క్యా హై? హాన్, మురళీ కో ఇస్ ప్రకార్ సే సున్నా హై. జ్ఞాన్ కీ బాతే క్యా హై, యోగ్ కీ బాతే క్యా హై, ధారణా కీ బాతే క్యా హై, ఔర్ సేవా కీ బాతే క్యా హై, క్యూంకి వో సబ్ మిలా కే హీ తో మురళీ హోతా హై నా, చారో సబ్జెక్ట్ కా. तो हमें इन चारों सब्जेक्ट में आगे जाना है, तो ये चारों सब्जेक्ट सुनना है ऐसे इस प्रकार से नोट करके. तो क्या होता है फिर हमको याद रखने के लिए बहुत इजी रहता है. और कभी भी ये भी नोट कर सकते हैं आप कि आज की मुरली में कौन सी बात विशेष थी, नया था. हर मुरली में एक बात तो आपको नया लगेगा ही लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भले हर 5,000 साल के बाद हम इस साकार मुरली को सुनते हैं तो भी हमको नया लगता है, है ना? ऐसा अनुभव है ना? तो आज का क्या बात नया था? बाबा ने आज शुरू में ही कहा कि एक ऐसी विशेष यूनिवर्सिटी है. कैसी? सिर्फ मनुष्य ही परिवर्तन नहीं होते हैं परंतु तत्वों को भी परिवर्तन करती है. तो ये नशा है कि हम कहां पे पढ़ रहे हैं या जस्ट मुरली में आना है, आते हैं, सुनते जाते, ऐसा है नहीं ना? और बैठे भी कैसे? देखो यूनिवर्सिटी लगते हैं ना कुर्सियों पे बैठ के हॉल में सुने तो ये है ही स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी. और एक बाबा नया नाम दिया, क्या बताओ? यूनिवर्सिटी के ऊपर ही और एक नाम बताया बाबा ने, रियल यूनिवर्सिटी है ये, रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी. क्योंकि दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है ना, पढ़ाई पढ़ाते हैं. बाबा ने बोला यही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, जिससे मनुष्य भी क्या तत्व. तो मेरे को संकल्प आया था सुनते समय, हम तो आके परिवर्तन हो रहे, फिर तत्व कैसे परिवर्तन हो रहे बताओ? क्योंकि हम सब कौन है? प्रकृति के मालिक, प्रकृति के पति. जब हम परिवर्तन होंगे तो ये प्रकृति भी परिवर्तन होगी. जब हमारा सद्गति होगी तो ये प्रकृति का भी सद्गति होगी. तो वो प्रकृति आके यहां पड़ती नहीं है हमारे जैसा, जैसे हम पढ़ के धारण करके सद्गति को पाते हैं. प्रकृति ऐसा आता नहीं है, लेकिन प्रकृति अपने से कनेक्ट है, इसलिए हमारे साथ साथ इस प्रकृति भी सद्गति को पाती है. और पढ़ाते क्या है बाबा इस यूनिवर्सिटी में? क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो मुरली आपको याद रहे ऐसा सोचो। बाबा ने हां और हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। हिस्ट्री कौन सी है? हाँ, आदि मध्य अंत का 5000 साल का। आज ताना मुरली में कि ये रिपीट होने वाला है। और बाप पे निश्चय किसको होते हैं? उनके लिए बाबा क्या राय दिया है? हाँ, बाबा ने राय दिया कि जिनको भी निश्चय हुआ कभी संशय नहीं लाना है, और जो भी कर्म करो क्या करना है, हमें बाप से राय लेना है। समझे? कुछ भी करो कर्म तो क्या करना है, बाप से राय लेना है। राय कब ले सकते? हाँ, कभी भी ले सकते, लेकिन कब, किससे राय लेते हम दुनिया में, बोलो। हाँ, अपने को, हम जिसको जानते हैं पहली बात, और जो हमें जानता है, जैसे दोस्त होते हैं, जैसे बाप होता है, कोई ना कोई एक संबंध होता है, तब जाके हम राय लेते ना। कोई नए आदमी के पास जाके राय लेते क्या? नहीं ना, अरे तुम जानते ही नहीं हो मेरे को, क्या राय लेने आ रहे हो। तो वैसे ही हम बाबा के साथ संबंध रखना है कि वो मेरा दोस्त भी है तो बाप भी है। तो जब उस संबंध का अनुभव होगा हमको, तो हमको कोई बताने की जरूरी नहीं कि उससे राय ले लो। हम राय नहीं ले रहे बाबा से, मतलब क्या हुआ कि हमको उस संबंध का अनुभव नहीं है। भले हमारे पास ज्ञान है कि वो हमारा बाप है, वो हमारा दोस्त है, पर हम राय नहीं लेंगे। क्यों? काम होने के बाद याद आता है, अरे यार बाबा को पूछना था हमें, क्योंकि समस्या आ गई तब हम सोचते हैं। तो इसलिए पहले क्या करना है, राय लेने के लिए पहला स्टेप बाप से संबंध जोड़ना है। वो मेरा सखा है, आपको जो संबंध अच्छा लगता है, वो मेरा माँ है, मेरा दोस्त है, मैं उसका बच्चा हूं। तो जितना आप संबंध का अनुभव करोगे उतना बाप से राय लेंगे। और निश्चय बुद्धि के बारे में बाबा क्या बोला, जिसको संशय आता क्या हो जाएगा? हाँ, आश्चर्यवंत सुनंती कतंती बागंती हो जाएंगे, और फिर गिरे तो चकनाचूर, और छेड़े तो वैकुंठ रस। तो संशय कहां से चालू होता है, कहां कहां संशय होता है? पहले स्वयं में संशय, फिर दूसरा ज्ञान में संशय, डायरेक्ट बाप में नहीं जाते, ज्ञान में संशय आता है, फिर तीसरा देखते रहते हैं ब्राह्मणों को, फिर ब्राह्मणों में संशय। ये जब दूसरों को देखने का संस्कार होता है तब ये संशय उत्पन्न होता है। जैसे बहनों को देखते हैं, सेंटर में आने वाले स्टूडेंट्स को देखते हैं, दूसरों को देखने का जब तक रहेगा तब तक ये संशय बढ़ेगा। तो उसके लिए बाबा ने क्या बोला, स्वयं को देखो तो कभी संशय आएगा ही नहीं। और दूसरा क्या होगा, निश्चय से कोई भी परिस्थिति हो, निश्चय बुद्धि वैजयंती हो जाएंगे। और क्या बोला बाबा ने, हां बाबा ने बोला, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, प्यार का सागर। बाप आया है हमें क्या बनाने, प्यारा बनाने। किस लिए प्यारा बनाने? साथ में बोला बाबा ने, हां सतयुग प्यारी दुनिया में जाने के लिए। और सुना मुरली सुनते समय ध्यान दिया रहो आप लोग कि हर चीज कंपैरिजन कर रहा था बाबा, अभी हम कैसी दुनिया में हैं? हाँ, गंदी दुनिया है, यहां सब दुखी दुख है, मच्छर गंदे हैं, है ना। लेकिन सतयुग में क्या रहेगा? सुख ही सुख, प्यारी दुनिया है वो। वहां के लिए क्या गायन है? हाँ, गाय का भी गायन दिया बाबा ने, शेर और हाँ एक उदाहरण दिया। हाँ, वहां कोई गंदी चीज होती नहीं, सभी प्यारे होते हैं, तत्व भी प्यारे रहते हैं। तो मुरली सुनते समय इस प्रकार से सुनने का कि बाबा आज की मुरली में क्या क्या एग्जाम्पल्स भी दिया है, दृष्टांत देता रहता ना बाबा बीच बीच में, तो सिर्फ अगर दृष्टांत को भी याद रखोगे ना, सारा मुरली आपको याद रहेगा। बताओ आज क्या क्या एग्जाम्पल्स दिया बाबा ने मुरली में? एक दिया गाय और हाँ शेर और गाय दोनों, वो एक दृष्टांत दिया। और दूसरा हाँ दूसरा दृष्टांत ये भी दिया कि अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकला, उसके लिए बाबा ने क्या बोला? ऐसा कुछ होता नहीं है, साइंस वाले भी उसको मानते नहीं है कि कोई लुप्त नदी है, बोले तो हम है सच्ची गंगाएं। और क्या दृष्टांत दिया बाबा ने? हाँ, तीन नदियों का संगम होता है, और संगम संगम किसको कहा गया? बाबा ने किसको संगम बोला? आत्मा और परमात्मा का संगम, यही सच्चा संगम है। सॉरी, हाँ कुंभ का मेले का भी एग्जाम्पल दिया बाबा ने। हाँ, तो इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल्स को भी हम याद रखेंगे कि बाबा ने आज क्या क्या उदाहरण दिया है, तो हमें सारी मुरली याद रहेगी। और बाबा ने ये भी कहा है कि जितना हम बाप को माना स्वयं में रहेंगे, उतना कोई भी परिस्थिति हमें परिस्थिति नहीं लगेगी। फिर क्या लगेगा? हाँ, चेरती कला का साधन। और हर परिस्थिति में बाबा साथ में और भी ऐड किया वहां पे, शक्तिशाली रहोगे, संतुष्ट रहोगे और शक्तिशाली बनोगे। ये याद रहता है, परिस्थिति आए तो ये परिस्थिति नहीं है, या सिर्फ परिस्थिति जाने के बाद आप सोचते हो? ये क्यों याद नहीं रहता अपने को? परिस्थिति तो हर एक को आ रहा है ना, नहीं आता परिस्थिति? हर एक को आता है ना, तो क्यों कभी लगता है परिस्थिति ये मेरा चेरती कला का साधन है? लगा या रोना आता है, क्या बाबा आपके बनने के बाद भी ये परिस्थितियां आ रही है और मेरे को ही क्यों आ रही है? या ये लगता है कि बाबा ने आज एक बात बताया जो आप सबको मालूम है, ये समय कैसी है? समय के बारे में बाबा ने बताया, कल्याणकारी संगम युग है ये। ये कौन सी युग है? ये कूट कूट के भर लो, क्या है? कल्याणकारी संगम युग है। मतलब क्या? हाँ, ये ज्ञान नहीं, इसमें निश्चय चाहिए। ज्ञान है आप सबको, ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें अकल्याण कुछ भी हो नहीं सकता। ये मानते हो? अगर मानने वाले को कभी संशय नहीं आता कि समस्या क्यों आ रहे मेरे पास, अपने आप को चेक करो अभी। हाँ, एक मीरा कवि था, तो इस प्रकार से अपने आप को चेक करो कि अगर ये कल्याणकारी संगम युग है, हमारे पास तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं कि अकल्याण दिखते हुए भी हम उस समय सोचते हैं कि यार अकल ये क्यों हो रहा मेरे साथ, पर बाद में पता पड़ता, क्योंकि हमें नशा है कि अकल्याण तो हो ही नहीं सकता कुछ, फिर बाद में पता पड़ता इसमें कितना कल्याण समाया हुआ है। कब ये पता पड़ेगा? जब हमको निश्चय है बाबा पे, तब हम परिस्थिति को परिस्थिति के जैसे नहीं देखेंगे, तब उसको क्या कहेंगे कि ये हमें आगे बढ़ाने का साधन है एक, समझे? तो हर बार ये समझना है कि जो समय मैं जी रही हूं ये कौन सी समय है? कल्याणकारी है। और मेरे साथ है कौन? शिव बाबा। सिर्फ शिव बाबा नहीं है, कल्याणकारी बाप है। हाँ, भले इस समय के लिए मेरे को दिख नहीं रही है, मैं मानता हूं आपको बहुत पेट दर्द हो रहा है, आप मधुबन नहीं आ पा रहे हो, तो उस समय उसमें क्या कल्याण है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या कल्याण है उस आत्मा के लिए, बाप जानता है ना, तो कुछ ना कुछ कल्याण समय होता है उसमें भी। लेकिन वो तब अनुभव होता है जब हम उस बात पे निश्चय रखते हैं कि कल्याणकारी बाप मेरे साथ है, तो मुझे कभी कुछ अकल्याण हो ही नहीं सकता। एक ज्ञान नहीं, अनुभव करके देखो, देखो फिर कितना खुशी होती है, परिस्थिति में भी खुशी होती है, फिर परिस्थिति परिस्थिति नहीं लगती है, वो एक चढ़ती का साधन। और फिर साथ में बाबा ने क्या बोला, वो संतुष्ट रहते हैं। देखो परिस्थिति आई, प्रश्न क्वेश्चन आया, ये क्यों आ रहा है, तो हम संतुष्ट रह सकते हैं? हाँ। हिलती कब है? जब हमारे पास ज्ञान भरपूर नहीं है। निश्चय तो है, निश्चय तो है हमको, फिर भी हिलते हैं हम। निश्चय मान भी लेते एक सेकंड के लिए कल्याणकारी है हम, लेकिन जब ज्ञान भरपूर नहीं है अपने बुद्धि में, तो क्या होता है, हिलते रहे। ज्ञान है भले, हम मानने के लिए भी तैयार है कि कल्याणकारी है, लेकिन हम क्यों उसका अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज्ञान की कमी है। तो इसलिए हम जब भी मुरली सुनते हैं, इसके लिए क्या करना, खुद के लिए अव्यक्त मुरली पढ़ना चालू करना। जब आप लोग मुरलियां पढ़ेंगे तो ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान भी एक शक्ति है। ज्ञान को धारण करने से शक्ति बन जाता है, वो अलग है, वो अलग पहलू है, वो तो है ही है। इसके अलावा जो आप मुरली सुनते हो, आपको कनरस मिल रहा है, भले आपको याद नहीं रहता है मुरली, धारण भी नहीं करते हो, तो भी उस शक्ति का अनुभव हो रहा है आपको, भले 100% नहीं है, 2% तो अनुभव हो रहा है सुनने से। तो इसीलिए क्या करना है, रोज अगर हमको शक्तिशाली बनना है तो रोज कम से कम एक पेज अपने लिए अव्यक्त मुरली पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतना शक्तिशाली बनेंगे। तो कोई भी समस्या आए, कभी भी कुछ भी आ जाए, तब डगमगाएंगे नहीं। और स्लोगन में भी बाबा ने बोला ना कि जो स्वस्थिति में रहेंगे वो हर परिस्थिति को पार कर जाएंगे। तो अभी आप देखो दुनिया में, घर में रहते हुए कोई समस्या आ रही है, तो हम क्यों नहीं पार हो पा रहे, हम समस्या के प्रभाव में पड़ रहे हैं। उसके बदले हमें क्या करना है, अपने को शक्तिशाली बनना है और अपना प्रभाव परिस्थिति पे डालना है। लेकिन होता क्या है, वहां उल्टा ही हो जाता है, परिस्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है और हम टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए क्या करना है, स्वस्थिति में रहना है। मैं कौन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो मेरा कोई भी परिस्थिति हो, कैसा होगा परिस्थिति, फिर परिस्थिति नहीं दिखेगा, बाबा की शब्दों में पेपर टाइगर दिखेगा, और वो एक साधन बन जाएगा, ऊपर चढ़ने के लिए। और बाबा ने और क्या बोला मुरली में आज? हाँ, हार्ट फेल नहीं होते। और क्या बोला बाबा ने? एक ज्ञान क्या, किसका ज्ञान है? ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान है। ये नशा है ऑलमाइटी अथॉरिटी। इस पे एक छोटा सा मैं एक उदाहरण सुनाता हूं आपको, जो मेरे साथ घटी है। हम छोटे बच्चे थे जब एग्जीबिशन समझा रहे थे, हमारे सेंटर पे आए थे, मधुबन से एग्जीबिशन आया था, वहां हम समझा रहे थे। उस समय मैं समझता हूं मैं कुछ 10 साल का था, तो स्वर्ग के बारे में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था समझाने का, तो स्वर्ग के बारे में समझा रहा था। तो कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे मेरे सामने, तो उनको सतयुग के बारे में समझा रहा था कि वहां तत्व कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ाई चलता है वहां, क्या क्या करते हैं हम सारा दिन में, सतयुग में कैसे राजकुमार रहते हैं वहां क्या। तो उन्होंने मेरे को ऐसे करते हैं ना कि उसको नहीं मालूम है, छोटा बच्चा है, इसको चिढ़ा देते। तो उन्होंने मेरे से फिर वाद विवाद में जैसे पूछने लगे क्वेश्चंस कि क्यों माने हम। जैसे आज बाबा बोला ना कि अगर मुझे आत्मा का साक्षात्कार होगा, कोई कई लोग ऐसा बोलते हैं मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानता हूं। तो वैसे ही वो लोग वैसे ही पूछा मेरे को क्वेश्चन कि हम क्यों माने कि सतयुग ऐसा रहता है, सतयुग में ये रहता है। तो एकदम मैं बाबा को एक सेकंड के लिए पूछा, बाबा इनको क्या जवाब दे अभी। बाबा ने एकदम फ्लैश किया मेरे को उस समय 10 साल की उम्र में, कि मैंने पूछा भाई साहब आपको पता है आपकी किडनी की शेप क्या है? बोला हाँ। हार्ट की शेप क्या है? बोला हाँ। आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला कि हमको पढ़ाया गया है, हमने पढ़ के मान लिया कि ये शेप ऐसा होता है। तो किसी अथॉरिटी वालों ने बोला आपको, वैसे ही हमको ये परमात्मा आके ये पढ़ा रहा है। वो सर्व अथॉरिटी है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आके पढ़ा रहे तब हम आपको बता रहे। तो इस अथॉरिटी से जब हम आप उनको समझाएंगे तो क्या होगा? उन पे प्रभाव होगा। और मीरा का एग्जाम्पल देते हुए बाबा ने क्या बोला कि साक्षात्कार से क्या बोला? हाँ, साक्षात्कार से खुशी मिलती है। हाँ, सदगति नहीं मिलती है। मीरा को भी अगली जन्म लेना पड़ा लेकिन सदगति नहीं मिला। तो वैसे ही भले हमारा प्यार कैसे हो भगवान के साथ, मीरा जैसी हो, तू ही सब कुछ है मेरा, तू ही मेरा संसार है, पर साक्षात्कार के रूप में संबंध में मीरा जैसा हो, भले हम साक्षात्कार से उससे प्राप्ति कुछ नहीं होती है। हाँ, तो इस प्रकार से उस अथॉरिटी को याद करो कि कौन मुझे ये ज्ञान दे रहा है, कौन मुझे ये पढ़ा रहा है। और पहले 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 शुरू में सेंटर के बाहर ये लिखा भी रहता था जब हम छोटे बच्चे थे कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड फादर शिवा, ऐसे बोर्ड लगा हुआ रहता था। तो बचपन से हम लोग पढ़ते थे कि ये कहां जा रहे हम, ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास। तो आप सब इस प्रकार से सारा दिन ये ज्ञान का चिंतन करो, ठीक है? अब मुरली याद रहेगा क्या क्या बातें बाबा ने बोला, कितना हमको निश्चय रखना है और हर परिस्थिति को कैसे पार करना है। हाँ, स्वस्थिति में रहकर। और लास्ट पॉइंट क्या है, कोई भी कर्म करते हो क्या करना है, बाप से राय लेना है और परिस्थिति को अपना छेड़ती का साधन बनाना है, ठीक है? ओम शांति।